कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 को पुनः पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना भक्ति, और यजमान साधक भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके सब रास्तों को खोल देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता है। पाप कटेर पवित्र हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का ओरिजिनल जो शरीर है, एक सतीथि में जो सतलोक में रहते हैं सथिर, वो तो एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है हम उसको देख नहीं सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए, तो वो अपने रूप को सरल करता हुआ आए है, अन्य रूप धारण करके वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहां लिखना था कबीर देव विद्युत के समान, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, वो कबीर साहब विद्युत यानी आकाशीय बिजली के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता। वर्णीय माने नेक आत्मा को, अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब 27 में क्या बताया है कि वो तेज पुंज परमात्मा को, यानी जो तेज पुंज का शरीर है, हल्का तेज पुंज का शरीर, गरीबदास जी ने कहा तेज पुंज अन्य तन दे धरकर इस विध हमको बैठी, तो परमात्मा को जो परमात्मा, ये तो उन्होंने कहा कि बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, तीसरे पृष्ठ पर रहता है, वहां एक देशीय है, एक स्थान पर है, धूलोक में रहता है यानी अमर लोक में, सतलोक में। अब यहां देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का 1, 2, 3 आपको दिखाते हैं, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर, ये यहां से 82 शुरू हुआ है और इसका एक मंत्र ये है, इसमें कितना स्पष्ट किया है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करता परमेश्वर, वो प्रकाश रूप है, साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है और पापों का नाश करने वाला है। और दयानंद कह है पाप नाश करता है नहीं भगवान, सौ जगह लिख रखा है वेदों में पाप नाश करता है परमात्मा, अपराध नाश करता है, और वह राजीव राजा की तरह, राजीव राजा के समान, ये 269 पृष्ठ पे, अब 270 पे इसका शेष अनुवाद है, राजा के समान दशम यानी दर्शनीय है, राजा के समान देखण जोगा है, देखण जोगा, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उस अच्छी आत्मा को मिलता है। कैसे मिलता, जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे आकाशीय बिजली ऐसी धातु पर गिरती है जिस पर उसका अट्रैक्शन होता है। जैसे कांस्य की धातु को वर्षा के दिनों में बाहर डाल दिया जाए तो अमूमन वहां पर बिजली गिर जाती है। तो पहले हमारे यहाँ थाली बेले कांस्य के होते थे तो उनको वर्षा के दिनों में अंदर रखवा दिया करते थे हमारे दादा दादी जी। तो इस प्रकार कहा कि जैसे विद्युत का अट्रैक्शन कांस्य धातु पर होता है ऐसे ही वो अपने पुण्य आत्मा पर जिस पर उसका विशेष अट्रैक्शन है उसी पर आकर गिरता है, उसी को आकर मिलता है भगवान। अब दूसरे में क्या बताया है उसका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का परमात्मा का, वो हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप तत्व ज्ञान देने के उद्देश्य से आप उन महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओहो स्पष्ट हो गया, आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। हे आप ये लिख दिया सर्वज्ञ है, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं। इन्हीं के शब्दों में सिर्फ थोड़ा सा सावधानी बरतनी अपने, परमात्मा ने दया कर रखी है। यदि ये दास अनुवाद करता तो कोई ना मानना इसने, ना वो पढ़े लिखे थे, ये भ्रम हो जाता। अब इन पढ़े लिखे पर कटवा दिया रोग परमात्मा ने, जो कति निराकार बताओ भगवान ने उनसे साकार सिद्ध करवा दिया। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो मन अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपने आत्माओ अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का, जिसमें फिर से नाम को क्लियर किया है। सूक्त नंबर 96 का मंत्र 16 से लेकर 20 तक दिखाते हैं कि वहाँ थोड़ा सा लेते हैं हम, फिर थोड़ा आगे चलेंगे, अभी ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 16। हे परमात्मन गुह्यम माने रहस्य में, गुप्त आपके सरोपरी रहस्य में यानी गुप्त, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने जो तुम्हारी संज्ञा है, ये नाम का नाम लिखना था, जो तुम्हारा श्रेष्ठ नाम है गुप्त जिसने कोई नहीं जानते आप उसका ज्ञान कराइए। अब यहाँ दसवें में क्या कहा है कि वो शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुभंती वहीन मरुतो गणेन कबीर गिर भी काव्येन कबीर संसोम पवित्रम अत्यति रेभन। अब रेभन का अर्थ है गर्जता हुआ, ऊंची स्वर में बोलता है। क्या बोलता है अब बताएंगे, ये नतड़ंगा कर रखा है बहुत से यहाँ। अब कबीर गिर भी काव्यना कबीर, ये कबीर है, कबीर कहो चाहे कवि ही बोलो, जैसे पुनः कहो चाहे पुनर कहो, तो उसका अर्थ एक ही होता है। ये क्या बताते हैं कि शिशु रूप में प्रगट परमात्मा फिर धीरे धीरे जो अपनी लीला करता हुआ बड़ा होता है, फिर वो वहां प्रगट होता है, तो उसने वो अपनी कबीर गिर भी कबीर वाणी को काव्य ना माने कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उच्चारण करता है ऊंचे स्वर में पवित्र वाणी को। और वो कबीर संत सोम, संत माने वो ऋषि या संत रूप में वो अमर परमात्मा, वो कबीर आता है, कबीर देव आता है, वो कबीर देव है। इन्होंने इस कवि का अर्थ भी नहीं किया इसके अंदर, क्योंकि फिर इन्हें लिखना पड़ता कितन कितन, ये केवल एक लिखा है कवि, जैसे ये है ना कबीर गिर भी, इसका उन्होंने ऊपर रे को अपसर्ग लगा के यहाँ लिख दिया और गिर भी अलग लिख दिया, ये कबीर गिर भी। हम इसको कहें कबीर गिर भी माने वाणी के द्वारा, कबीर वाणी के द्वारा, सीधा सा इन्हीं के शब्दों में कबीर, इसको कबीर मान लो, नौका ने लिखा कबीर गिर भी कबीर वाणी के द्वारा, काव्यना कविताओं से, और ऊंचे स्वर में बोलता है, और वो कबीर, वो कबीर देव, वो संत रूप में प्रकट हुआ अमर परमात्मा अपनी यथार्थ वाणी को उच्चारण करता है। फिर देखना इन्होंने तो ऐसा लिख रखा है कि ऊपर समझ में ना आवे, शिशु उस परमात्मा को, शिशु माने सूक्ष्म, ये इसका अर्थ बनाया है कि सयति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगदीति सुसुरु परमात्मा, उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है यानी साकार है, जो हरियंत अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का गान करते हैं, वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का, जब वो सर्वव्यापक है तो गतिकरण की क्या जरूरत होगी, इसने क्या आवश्यकता पड़ेगी। वो गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब और कवि लोग कर दिया इसका, यह लिखना था कबीर गिर भी, यानी कबीर वाणी द्वारा काव्यन कविताओं से, कविताओं माने लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो अपनी वाणी बोलता है। लेकिन वो होता है अमर परमात्मा, इसी कारण से कि वो अपनी कविताओं के माध्यम से अपना ज्ञान देता है, इसलिए उसको कवि भी कहने लग जाते हैं। अब यहां देखो 18वें में कहा है कि ऋषि मना ये ऋषि कृत, ये ऋषि कृत है जो मिट रहा सवरसा सहसर अणिथ है पदवी कवि नाम। वो परमात्मा जब ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषि कृत, उस ऋषि के द्वारा बनाई गई वो कविताएं यानी तत्व ज्ञान के दोहे आदि, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी पदवी प्राप्त करता है, पदवी कवि नाम। यहां कवि लिखना ठीक है क्योंकि कवि के विषय जानकारी है। वो तृतीयम धाम महिषी शिष्यम संत सोम विराजमानु राजती सतुप। अब इसका अनुवाद कैसे किया, सोम परमात्मा, सोम माने अमर परमात्मा, इन्होंने सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, इनका अनुवाद यहां लिखा है देव्यान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरा दो मुक्ति धाम है, उसमें विराजम विराजमान जो ज्ञान योगी, ज्ञान योगी ठोक दिया इसमें, इनका याद आ गया यहाँ पे कि दानंद तो निराकार बताओ है और वेदों पा गया साकार, तो ज्ञान योगी लिख दिया। किसी ने पढ़ने या नहीं सोचेंगे, संस्कृत आवा नहीं थी तो किसी ने चेष्टा की इनके अनुवाद को पढ़ने की, तो नहीं सोचा ज्ञान योगी के बारे में कह रखे है। जब ज्ञान योगी का इसमें जिक्र नहीं किया है, ये तो भगवान की महिमा है। और वो ज्ञान योगी है उसको प्रकाश करने वाला है हमारे सट्टे कवि नाम पदवी, जो कांतर्षियों की पदवी यहाँ लिखना था, जो कव इनको यहाँ कवि का अर्थ लिख दिया कांतदर्शी, यहाँ लिखना था वो कवियों की पदवी को प्राप्त करता है, मुख्य स्थान उसको, उसका मुख्य स्थान होता है कबीर देव, कबीर साहब को कवि भी गिना जाता है। ऋषिकृत इसका सब ज्ञानों का प्रदाता, कोई बात हुई, ऋषिकृत उस संत रूप या ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा कृत वो कबीर वाणी या अर्थों का अर्थ कर रखे है। सवरसा, सवरसा माने स्वर्ग की तरह आनंद, बहुत ही आनंददायक है उसके सब उपासकों के लिए। अब हमने ये देखना था कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान, अलगा कर दिया ज्ञान योगी, अब यहाँ क्यों ना लिखा है ज्ञान योगी। यहाँ देखिएगा इन ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 27 में देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के और मंत्र नंबर 27 में लिखा है कि जो परमात्मा ध्रुलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यहां भूल गए ज्ञान योगी लिखना, ये परमात्मा अपरंपार शक्ति है, इनसे लिखवा भी दिया, इनकी बुद्धि को भी कंडम कर दिया, इसमें सच्चाई लिखवा दी, और यहाँ इन्होंने अड़ंगा उड़ाने की चेष्टा की तो भी उड़ा सकते क्योंकि हम संस्कृत भी हम जानते हैं, देवनागरी लिपि को भी हम समझ सकते हैं। देखिए अब 9 के 96 का ये 18वां मंत्र है, 18वां, इसमें लिखा कि वो अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा है तृतीयम धाम, ये तीसरा जो मुक्ति धाम है, ये पितरान पितरुन छोड़ दे, जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, ये लिखना था वैसे ज्ञान योगी नहीं, वो वहां रहता है और वहां से गति करके आता है अपन आत्मा, वो कैसे आता है ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के, अब 96 पे आ गए हम दोबारा, ये हमने 18वां पढ़ा, अब 19वां भी यही है, इसमें इन्होंने तुरियम धाम भी लिखा है, मूल संस्कृत में तुरियम, तुरियम माने चौथा, ये खुद अनुवाद करे तुरियम माने चौथा, धाम माने धाम, वो चौथे धाम में भी है, सतलोक से ऊपर चौथा धाम है अकै लोक अनामी लोक, उसमें भी भगवान वही रहता है। इन्होंने खुद क्या लिखा कि चौथा परम पद परमात्मा है, इनके चौथा जो परम पद है वो भी परमात्मा है, चौथा परम पद यानी चौथा परम पद परमात्मा है, कोई और इस गीता ज्ञान से नारा ये चौथा परमात्मा बता रहे हो। वास्तव ये देखो महापुरुष उस तुरीय परमात्मा का तुरियम, तुरीय माने चौथा, तुरियम उस चौथे परमात्मा का वर्णन करता है यानी चौथा परमात्मा है वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, शीघ्र गति वाला है। अब यहां देखो इसमें 20 में कमाल कर दिया है, वो कैसे आता है, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है यानी उसके बहुत शिष्य हो जाते हैं और वो परमात्मा उनका एज ए कंट्रोलर होता है और इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष में प्राप्त होकर उच्च स्वर से गर्जता हुआ अपने सच्चे ज्ञान को उच्च आवाज में बोलता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में बड़ी भांति प्रविष्ट होता है, वहां से चलकर यहाँ से आता है। और कैसे आता है, जैसे मरिय माने मनुष्य, मरिय मनुष्य शोभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य शोभर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता है, हुआ धनों के लिए कटिबद्ध होता है, इसी प्रकार प्रकृति रूप ऐश्वर्य को धारण करता हुआ परमात्मा सदैव उदित है। अब यहां सपट कर दिया कि जैसे व्यक्ति एक अपना जैसे कोई पुलिस में है अधिकारी तो वहां ड्रेस उतार दी सिविल अपना लगा के चल पड़ा, तो यहां स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा जैसे एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष में प्रविष्ट होकर गरजता हुआ आता है। और जैसे कैसे प्रविष्ट होता है, वो कैसे प्रविष्ट होता है, जैसे मनुष्य सोफर शरीर को धारण करता हुआ, सोफर शरीर को धारण करता हुआ यानी और कपड़े पहन ले आदमी, ऐसे परमात्मा इस सोफर शरीर को धारण कर, जैसे ये देखो 97 के 2 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 97 का मंत्र नंबर 2 में क्या कहा है कि भद्रा वस्त्र, अब शरीर को संत लैंग्वेज में आध्यात्मिक लैंग्वेज में वस्त्र भी कहते हैं, भद्रा वस्त्र समन्यावसान महान कबीर निवचनानी संसन, इसमें स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा जो कबीर देव है महान कबीर वो सर्वशक्तिमान कबीर निवचनानी, निवचनानी माने जो सुंदर वक्तव्य है, निवचनानी संसन सुंदर वक्तव्य है जो उनको जानता हुआ, संसन माने बोलना होता, महान कबीर लिख दिया ना, वो महान माने सर्वशक्तिमान कबीर देव। अब यहाँ इसका अर्थ है कि वो परमात्मा सम अन्य यानी उस परमेश्वर जैसा ही शक्तिशाली है और वो अन्य सुंदर अन्य वस्त्र माने अन्य शरीर, सम अन्य सम अन्य माने अलग कुछ कोई और उसी के समांतर शक्ति वाला अन्य वस्त्र धारण करके, वस्त्र कहो ते शरीर कहो, चोला कहो जैसे संत भाषा में कहते हैं, संत शरीर छोड़ गया चोला छोड़ गया, वस्त्र कहो चोला कहो शरीर कहो, भद्रा वस्त्र समन्यावसान है यानी अन्य कोई वस्त्र अच्छे वस्त्र सुंदर शरीर धारण करके परमात्मा यहाँ आकर निवास करता है और वो महान कबीर निवचनानी संसन वो अपने उन लोकोक्तियों के माध्यम से सुंदर वक्तियों से अपने संसन माने वो वाणी बोलता है कहता है। अब ये तो वेद वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और जिनको परमात्मा आकर मिले उन महापुरुषों ने भी यही जानकारी दी है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा अच्छा शहर था, उसमें एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था, उसका पुत्र था धर्मदास और इतना संपन्न थे वो धन में कि अगर उस क्षेत्र के राजा को कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती, जैसे कोई अकाल गिर गया या फ्लड आ गई, तो वो उस धर्मदास जी के पिताजी से वित्तीय सहायता प्राप्त करता था। और ऐसा धन युक्त व्यक्ति जो परमात्मा की खोज में घूम रहा है, वो कितनी पुण्यात्मा होगा पूर्व जन्म की। वो घूमता घूमता जैसा उसको गुरु मिला था, उसने डले ढोने बताए थे, उसी तरह चल पड़ा मथुरा माया, वहां चक्कर काटने परिक्रमा देने के लिए और उस तालाब मनाने के लिए जहाँ कृष्ण जी नाया करते। कृष्ण जी तो फिर वहां समुद्र में चले गए थे, वहां क्यों ना गए तुम सारे, आडो जोड़ मिला दिए, सारे मूर्ख बना दिया। अब वहां परमात्मा उनको मिले, तत्व ज्ञान से परिचित कराया। उसके बाद उस धर्मदास जी ने परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ अपने आंखों देखा, सतलोक लेकर गए परमात्मा। फिर उन्होंने अपने अनुभव से क्या कहा, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटने यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे अमृत भोजन मारे सत गुरु जी में, अमृत भोजन मारे सत गुरु जी में, वो शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे। अब जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने ये बता के सतलोक से चलकर आए, काटन काल की जंजीर, ये काल न ज्ञान में अब हमें फंसा रखा है, इस काल के कर्मों की जंजीरों को केवल कबीर परमात्मा काट सकता है। फिर वही परमेश्वर अपनी लीला अनुसार के वो चलकर आते हैं, सतलोक से गति करके आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से एक मलुक दास जी, एक मलुक दास नाम के महापुरुष हैं, उनको परमात्मा मिले। और वो बहुत बड़े किसान थे, खत्री कौम के अंदर उनका जन्म था, यानी अरोड़ा जाति में थे वो, और गांव के नंबरदार होते थे, उस समय सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार थे। नंबरदार की बहुत बड़ी पावर होती थी। और गरीबदास जी कहते हैं, गरीब दास घर घर फिरे और दरे कबीरा भेख है, भेष माने अलग वेशभूषा बना कर जगह जगह जाकर प्रकट होता है, गांव गांव में, नगर नगर में, घर घर में जाकर अपने बच्चों को, पुण्यात्माओं को तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। तो उसी उद्देश्य से परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक संत रूप में कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। उस आधार से वो वहां एक नगर में गए हुए थे जिसमें मलुकदास जी रहते थे, जिसमें मलुकदास जी नंबरदार थे। वहां दो चार भक्त परमात्मा के शिष्य थे, भक्तों ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे यहाँ गुरुदेव दर्शन दो, तो वहां चले गए। एक भक्त ने आमंत्रित किया, उनके घर रुके, तो वहां परमात्मा और उस गांव के जितने भी 10-5, 20-30 भगत थे वो इकट्ठे हो गए। परमात्मा ने सत्संग किया तो भगवान की, परमात्मा के आव भगत के लिए उन्होंने खीर बनाई, हलवा का प्रसाद बनाया। तो वो मुल्कदास चौधरी नंबरदार सुबह सुबह इधर घूमने फिरने जावे सैर सपट्टे को, और उसी समय हलवे में छोंक लागन का टाइम आ गया, परमात्मा लीला करे थे। हलवे में वो पात डालने हलवा बनाना तो एकदम छरड़ छरड़ और महक जावे दूर ताई देसी घी की। मुलुकदास ने एक दिन देखा भाई क्या है इन कैसा, चला गया वो, चलो कोई होगा इनका तीज त्योहार। अगले दिन फिर दूसरे भगत ने प्रार्थना कर दी और दूसरे भगत के चले गए। परमात्मा उसी रस्ते पर थे वो घर तकरीबन। उस दिन भी ऐसे ही हुआ, उसने देखा कि यू क्या हो रहा है आज, फिर यहाँ देसी घी का हलवा बनाया जा रहा, पात डाली एकदम चरडाटा उठा। तीसरे दिन उसने पूछा कि भाई यू के सांग है तो आज तीसरे घर में यू हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ये क्या कुछ है। तो किसी ने बता दिया क्योंकि संता के विरोधी घने हुए रहे गांव में, उन्होंने कहा चौधरी साहब ये एक पाखंडी आ रहा है और इन्हें लूट रहा है बेचारों को, रोज देसी घी के हलवे खावे खीर खावे है और इनको बर्बाद करेगा यू, कोई हानि करके जागा यहाँ से। अब चौथे घर में जिस दिन ये क्रिया थी उस दिन मुलुक दास पहुंच गया। वो कहने लगा भाई कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा है। तो दूसरे जो जिसके वो परमात्मा विराजमान थे जिस गुरु भगत, कहने लगे तो चौधरी साहब ये हमारे गुरु जी हैं और सत्संग कर रहे हैं। न बता रहे करके क्यों ना खाता अपना है। तो परमात्मा बोले भाई मेरे को तो भगवान बगैर कुछ किए ही दे रहा है, यानी जो क्रिया तुम करते हो मेरे को तो वैसे दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की। मुलक दास जी कहने लगे वो मुझे ना देता भगवान बिना करें, सारे दिन खेत में काम करते हैं जब जाकर दो कनक पैदा होती है। परमात्मा बोले भाई तेरा विश्वास को ना भगवान पे, तूने वो विधि प्राप्त को नहीं जिससे भगवान बिना करें भी दे दे। अब वो कुछ धार्मिक व्यक्ति होते हैं जो संतों से ज्यादा नहीं खसते, तो उसने थोड़ा विषय बदला, कहने लगा एक बात बताओ महाराज जी, क्या ये भगवान मुझे बिना करे दे देगा। कहाँ दे देगा जब विश्वास करोगे तो। अच्छा ठीक है, आज मैं रोटी नहीं खा खा रहा हूँ और आज जब तेरे भगवान ने मेरे ती खाना खिला दिया तो मैं तेरे चरणा पड़ जाऊंगा और तेरा शिष्य हो जाऊंगा, आजीवन गुलामी करूंगा, जैसे तू कहेगा वैसे करूंगा। और जय तेरे भगवान ने मेरे को नहीं खाना खिलाया बिना करे तो तेरे को पकड़ कर मजदूर लगाऊंगा और वहां खेतों में काम करवाऊंगा। परमात्मा बोले ठीक है जी मुझे स्वीकार है। कबीर साहब बोले अब मुलुकदास जी के खेत तो थे पूर्व दिशा में और वो पहुंच गया पश्चिम दिशा में अपने खेतों दूसरों के खेतों में और दूसरे गांव की सीमा में जाकर और एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया, ऊपर बैठ कर जाकर देखूंगा अरे कौन भोजन खिला देगा मुझे। अब मालिक कहते हैं सोशल चिद्र में करूं अपने जन के काज। अब क्या हुआ वहां कुछ भेड़ बकरियां चराने वाले आगे उस पेड़ के नीचे, उनका कोई त्योहार था तो उन्होंने कहा भाई तुम दो व्यक्ति छोड़ गए, तुम दूध निकाल कर बकरियों का गायों का दशे का दी गाय भी रखते थे और तुम आज खीर बना लो, हम भी तब तक बकरियां चराते हैं। तो वह तो दूध निकाल कर वृक्ष के नीचे चूल्हा चाला बना के साथ में कुआ था और वो लागे खीर बनाने। वह खीर बनने को हुई तब उन्होंने के देखा कि दूर से डाकू आ रहे थे घोड़ा पे, धूल उठती आ, उनको पता होता था कि ये ऐसा शहर से पट्टा डाकू आए गांव से, उन्हें पता लग गया कि वो आ गए डाकू इसी रास्ते से आ रहे हैं, ऑन द वे था और डाकू तो बिना वे भी चल रहा करे, वो तो डरते भाग गए कदे अपने मार दे, वो तो भाग गए छुप छुपा कर अपने, वो दूर गए थे उनके बकरी चराने वाले वहां और उनको भी कह दिया डाकू आगे डाकू, वो और आगे चले गए छोड़ छाड़ के खीर ने। अब वो व्यक्ति वो समूह आया डाकुआ का आकर वहां रुक गया, वृक्ष की छाया देख कर कुआ देखा, उन्होंने देखा कि ये क्या बन रहा है। एक डाकू उतर कर देखा, उसने बोला वो कहने लगा उस्ताद ये तो खीर है खीर, को डरता भाग गया बुनाई बुनाई तैयार करके आज खाएंगे। दूसरा कहने लगा उन्हें डाकुओं में से बुद्धिमान साहब ने बोला भाई कदे कोई जाल साजी हो और किसी ने इसमें विष डाल रखा हो, किसी को खिला के देख लें। तो वो एक कहने लगा भाई ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਤਾੜੇ ਛੁਪ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਗੜਾ ਵਾ ਨੀਚਾ। ਅਬ ਉਸਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਰੱਖੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਛੋੜਨਾ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਕਿ ਦੇਤਨ ਉਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਨੇ ਬੋਲਾ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾ, ਨੇ ਬੋਲਾ ਨਾ ਆਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਦੇ ਨੀਚਾ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਕ ਆਵ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਾਰਾਂ ਗੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰ ਅਸਾਂਗ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਪੱਟਦੇ ਹੀ ਨੀਚਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਪਤੀਲਾ ਢੱਕ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਉਹ ਥਾ ਉੱਪਰ ਡੱਕਣ, ਉਸਮੇ ਖੀਰ ਗਾਲ ਦੀ ਡਾਕੂਆ ਨੇ। ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਇਸਨੇ ਖਾ ਅੱਖਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਖਾ ਕੇ ਸਸੁਰਾ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖਾਊਂ ਖੀਰ, ਉਹਨੇ ਪੱਕੀ ਜਚਗੀ ਇਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਖਾਰ ਵੋ ਨੱਟ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਦੋ ਮਾਰੇ ਦੜਾ ਕੇ ਗੇਰ ਕੇ ਦੋ ਮਾਰੀ ਲਾਤ ਖਾ ਇਸਨੇ, ਆਛੀ ਖਿਲਾ ਦੀ ਅੱਜ ਬੈਠ ਸਾਡਾ ਦਸ ਮਿੰਟ ਅੱਧ ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਬਰਾ ਥਾ ਕਿ ਉਸਮੇ ਕੁਛ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਕਾਦੂ ਭਾਗ ਦਿਆ ਸੇ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਂਗ ਠੋਕੀ। ਅਬ ਜਬ ਉਸ ਪਰ ਆਪੱਤੀ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਕਾ ਫਸ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਤਬ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਜ ਮੁਝੇ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਸਿਸ ਬਣੂੰਗਾ। ਔਰ ਨਰੀ ਖੀਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇ ਥੇ ਪੱਕੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉੜਾ ਉਸਕਾ ਵਹਿ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਕਾਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਬਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਸੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀ ਥੀ। ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਕਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਾ ਬਾਜ ਲੈ, ਤਬ ਉਸਕਾ ਗੀਸਾ ਗਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਠੋਕ ਦੀ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾ ਮਾਂ ਕਾ ਪੜਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੰਤਰਿਆਮੀ ਥੇ, ਸੋ ਸਲ ਸੀਧਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੇ ਕਾਜ ਮੇਂ ਲੈਣੇ ਥੇ ਸਰਨ ਮੈਂ ਪੁਣਿਆਤਮਾ ਥੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਾ ਕੇ ਬਾਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰੀ ਸੇਵਾ? ਨੇ ਬੋਲਾ ਆਪਕਾ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਮਰ ਮਰ ਖੀਰ ਖਿਲਾਵੇ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸੇ ਵੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਮਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਪਣਾ ਛੋੜ ਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਮਾਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਵੀ ਇਹੀ ਲੀਲਾ ਕੀ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਤਲੋਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕਰ ਗਏ ਉਸ ਆਤਮਾ ਕੋ, ਤੀਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਪੜਾ ਰਹਾ। ਅਬ ਮਲੁਕ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਜਬ ਵੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਪ੍ਰੀਚਿਤ ਹੋਏ, ਜਪੋ ਰੇ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਕਬੀਰ, ਜਪੋ ਰੇ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਕਬੀਰ, ਜਪੋ ਰੇ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਕਬੀਰ। ਏਕ ਸਮੇਂ ਗੁਰ ਬੰਸੀ ਬਜਾਈ ਕਾਲੰਦਰੀ ਕੇ ਤੀਰ, ਏਕ ਸਮੇਂ ਗੁਰ ਬੰਸੀ ਬਜਾਈ ਕਾਲੰਦਰੀ ਕੇ ਤੀਰ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਥਕਤ ਬਹੇ ਵੋ ਰੁਕ ਗਿਆ ਦਰੀਆ ਨੀਰ, ਮਨ ਜਪੋ ਰੇ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਕਬੀਰ, ਜਪੋ ਰੇ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਕਬੀਰ। ਕੋਈ ਗਾਡੇ ਕੋਈ ਅਗਨ ਜਲਾਵੇ ਤਨਿਕ ਨਾ ਧਰਤੇ ਧੀਰ, ਕੋਈ ਗਾਡੇ ਕੋਈ ਅਗਨ ਜਲਾਵੇ ਤਨਿਕ ਨਾ ਧਰਤੇ ਧੀਰ, ਚਾਰ ਦਾਗ ਸੇ ਨਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਦਰੋ ਅਮਰ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਜਪੋ ਰੇ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਕਬੀਰ। ਦਾਸ ਮਲੂਕ ਸਲੂਕ ਕਹਿਤ ਹੈ ਖੋਜੋ ਖਸਮ ਕਬੀਰ, ਜਪੋ ਰੇ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਕਬੀਰ। ਅਬ ਵੋ ਮਲੁਕ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਬ ਗਿਆਨ ਸੇ ਪਰਿਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਬ ਕਹਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਕਿ ਤੁਮਹਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋ ਤੁਮ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਬੰਸੀ ਵਜਾਤੇ ਥੇ, ਜਬ ਗਾਏ ਗੂਏ ਆ ਜਾਤੀ ਥੀ ਉਸਕੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੰਸੀ ਵਜਾਈ ਥੀ। ਕਹਿਤੇ ਉਸ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਕਾ ਜਲ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਥਾ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਵੋ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਸੇ ਦੇਵਤਾ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਥੇ। ਉਹ ਸਮਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਲਾਤਾ ਸਟੇਟ ਕਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਬ ਉਨਕੇ ਮਿਲਤੇ ਜੁਲਤੇ ਸੇ ਲਕਸ਼ਣ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਓ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਜੋ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ जिसका आगे मुख्यमंत्री भी करबद्ध खड़ा हो जाता नतमस्तक होके, तो वो समर्थ सकती है कबीर जी। अब जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर अभी आपने देखे 82-86 इनके मंत्रों में 96 कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता है, तो दृढ़ भक्त होते हैं, फिर सारा संसार एक तरफ और वो एक तरफ, ऐसे भक्तों को परमात्मा मिलते हैं, उनके फिर इतिहास बनते हैं, आज तक उनके गुणगान गाए जाते हैं। दादू जी को मिले और 3 दिन 3 रात तक दादू जी बेहोश पड़े रहे थे, उनको सतलोक में लेकर गए। जब वापस आए थे तो उन्होंने क्या महिमा गाई कबीर परमेश्वर की। तो परमात्मा देखो, वेद बतावे, गीता जी बतावे, पवित्र वेद, ये सभी पवित्र सदग्रंथ बता रहे हैं, और आंखों देखा संत बता रहे हैं, तो सबकी मिलकर एक सुर हो गया, तो भगवान पहचानने में देर नहीं। अब दादू साहब जी क्या कहते हैं, जब वो परमात्मा से परिचित हुए, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे, जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ताको भाई कहते न आवे पारे। जो जो शरण कबीर के वो पार हो गए अनंत अपार, और कहते उस परमात्मा की क्या महिमा कहूं, कहते हुए भी हमारी जीभ रोना थक जाती है, उसकी महिमा गुणगान करते करते। कबीर करता आप है दूजा ना कोए, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। पूरे जगत को जगत गुरु वो कबीर परमात्मा है, ठेका पूर्ण होवे जब सब को तजे शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू जी कहते हैं देखो, शरीर तो सबका जाओगा, एक दिन पूरा होगा श्वास, लेकिन जो परमात्मा की शरण में है, परमेश्वर का बताया हुआ नाम जाप करते हैं, उनके निकट काल नहीं आ सकता है। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक, मासा घटे न तिल बधे विदना लिखे जुलेख, सच्चा सतगुरु बेट कर ऊपर मारे मेख। ये गरीबदास जी बता रहे हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिला, उन्होंने उनका ठोक कर गवाही दी, अपने एफिडेविट दे दिए अपने अमृतवाणियों में। जम जोरा, जम माने काल, यम जोरा माने मौत, काल डरे करतार से जय 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 जगदी से, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सी से। गरीबदास जी कहते हैं यु काल डरे करतार से कबीर परमेश्वर से, और हाथ जोड़ कर कहता जय 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 जगदीश, और ये जोरा माने मृत्यु, जोरा जोड़ी झाड़ता, जोड़ी माने जूते परमेश्वर कबीर जी के, या मौत था जूते झाड़ती है, नौकर है उसकी, और ये काल डरे करतार से जय 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 जगदी से, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगड़ डारे सी से। कहते हैं कि हमारे कबीर परमात्मा की आज्ञा बिना भगत के निकट, यानी परमात्मा के भगत के पास ये मौत अकाल मृत्यु भी नहीं कर सकता, ये काल या मौत तो उसके जूते झाड़ती है कबीर भगवान के, लेकिन उम्र बढ़ा देता है कबीर परमेश्वर, ये समर्थ शक्ति है। वेद बताते हैं यही कि वो अपने भक्त की आयु बढ़ा देता है। थोड़ा सा एक और ये और प्रमाण दे दें भगवान का, अभी कबीर देव तो आपका समझ में आ गया कि वेद कबीर देव कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ लगा रहे हैं। अब देखना ये ऋग्वेद में, ये है वही ऋग्वेद, इन आर्य समाजियों के द्वारा ही इसका अनुवाद है, मेरे सिद्धांत का क्रय हुआ, और ये मेरे सिद्धांत तो नहीं किया लेकिन इसके नाम से ही व्याख्या करता, जैसा भी इसमें फीत लिख लगा रखी है। ये वही है। इसके मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 80 के मंत्र नंबर 2 में ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 80 के और मंत्र नंबर 2 में, हे सोम हे अमर परमात्मा, आप उपासकों की आयु बढ़ाने वाले हैं। हो गया स्पष्ट? हे परमात्मा, आप उपासकों की आयु बढ़ाने वाले हैं। के बढ़ाने वाले? और ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र 2 में भी यही प्रमाण है। वहां इन्होंने याद आगी दानन तो भगवान ने बता करता, कुछ भी ना कर सकता सत्यार प्रकाश में। यहां देखियो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 161 है, ये सूक्त नंबर 161 है और इसका मंत्र नंबर 2, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया हो, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया हो, पहुंच ही गया है, तो भी उस रोगी को या मैं वैद्य डाजियन के याद आ गया को होदानंद नु का अगर कुछ नहीं कर सकता, तुमने गलत अनुवाद कर दिया। तो इन्होंने ऋग्वेद जो है ये को बुक ऑफ मेडिसिन नहीं है, ये तो भगवान की महिमा की वाणी है। तो यहाँ लिखना था वो परमात्मा उस रोगी को कष्टप्रद रोग से पंजे से छुड़वा लाता हूँ, परमात्मा कहता है, और 100 शरद ऋतुओं यानी 100 वर्ष तक जीने के लिए इसको बलियुक्त करता हूँ। अब देखो इन्हीं का एक अनुवाद करता और है, ये भी एक और दिखाते हैं आपको। अब ये तो था किसी दूसरे का अनुवाद। अब आपने जो ये पुस्तक देखा इसमें जिसका ये अनुवाद करता कोई और था, है ये भी आर्य समाज का ही दानंद का चेला था, इसने वहां ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 के मंत्र नंबर 2 में तो ठीक लिख दिया, यहाँ इसका याद आ गया कि तय इसने वेद घसोट दिया। इनका मतलब था कि इनका नाश कर दें, वेद दोनों को समझे कोई नहीं, संस्कृति से नाव नहीं थी, हिंदी हिंदी कोई करना यूचा था, पढ़ वेदों को हिंदी हिंदी पढ़ के वो अपना वो भी पार बोल रहा था, क्योंकि इनके अनुवाद ने पढ़ लिया शर्म दर्द हो आदमी के, हरिदास अनुवाद करेगा इसको पढ़ियो शुरू कर दियो तो आखिर तक रुक नहीं सकते, ऐसी महिमा है वेदों में परमात्मा की। अब यहाँ देखो ये भी आर्य समाज का ही अनुवादक है, कोई आचार्य ऋग्वेद है ये द्वितीय भाग, इसने बड़ी जल्द में कर रखा है। यहाँ देखियो ये कौन है प्रकाशक, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, पंडिता राकेश रानी, और इसके कौन है अनुवादक, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना इतना दान संस्थान से प्रकाशित है। और यहाँ इसका अनुवाद करता ये इसका महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ, ये करोल बाग नई दिल्ली से छपा है। अब इसके देखो दसवें मंडल का 161 में सूक्त का मंत्र नंबर 2 इसने सही कराया है, ये है 161 ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त 161, ये यहां से शुरू होता है, ये इसका दूसरा मंत्र यहां पर है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं, तो उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यहां अनुभावार्थ में इसने सही क्लियर कर दिया, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो यानी उसके जीवन अंत हो गया हो, तो उसका रोग सीमा से पार हो गया है, तब भी परमात्मा यह सही क्या यहां वेदना लिखे ने, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। अब आपने देखा था ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 के मंत्र नंबर 2 में स्पष्ट कर रखा है कि भगवान उपासकों की आयु बढ़ा देता है, अब परमात्मा कहते हैं काल जो पीस है पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे कबीर परमेश्वर के दरबारे। ओए होए, गरीबदास साहिब कहते हैं कि काल ड्रे करतारते जय 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 जगदीश, और ये जोरा ये मौत जूती झाड़ता और उसके परमात्मा की दौड़ न चढ़ना कर माथे के लावे कि तेरी आज्ञा बिना मालिक तेरे वंश के निकट में नहीं जाऊं। यहाँ आपको लाखों प्रमाण दिखा देंगे जिनकी आयु बढ़ा रखी है, एक नहीं। तो पुणात्मा फिर क्या कहते हैं, काल जो पीस है पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। ये थारा 21 ब्रह्मांड का मालिक यू काल गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहे मैं काल हूँ, स्वप्न कर दूंगा और मार दूंगा। और फिर वह खुद ही कहता है कि परमात्मा तो कोई और है, वो तो उत्तम पुरुष है, तू अन्य उसकी शरण में जा जब तू परम शांति को प्राप्त होगा। तो यहाँ गरीबदास साहिब जो कह रहे हैं कि काल तपी से पीसना, यानी उसके आटा पीसे भगवान का, कहने का भाव ये है कि उसके सामने ये तो एक ऐसे एज ए सर्वेंट है, और मौत है पनिहार इसका पानी भर है, और ये दो असल मजदूर है मेरे परमेश्वर कबीर साहब के दरबार। अब वही दादू साहब जी कह रहे हैं आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब क्या लीला करते हैं, दादू जी की मृत्यु हो जाती है, परमात्मा उसको वापस छुड़वा के लाते हैं थोड़ी देर, और धर्मराज हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है और कहते भगवान ले जाओ, गलती बन गई हमसे। उसके बाद दादू साहब कह रहे हैं कि आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यु काल आके घेर लेता है, और सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए, मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले हे कबीर चरण की छाही। के जो ही मैंने याद किया एक क्षण में पहुंचूंगा, क्षण एक में बिजली जैसी गति से परमात्मा आकर अपने नेक आत्मा को मिलते हैं, ये वेद प्रमाण देते हैं। और साथ में ये महापुरुष जिन नेक आत्माओं को परमात्मा मिले हैं उन्होंने ये प्रमाणित किया है, मेट दिए अपराध सब, सब पापों का नाश कर दिया मेरों का गीत ये कह रहे हैं दादू साहब कहते हैं। और आन मिले छन माह, एक क्षण में सेकंड के कुछ हिस्से में परमात्मा आ जाते ना, तो काल खा जाओ हमने। सेवक देव निध चरण का दादू अपना जाने, बृंगी सत कबीर ने हम कर लिया आप समान, दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीरी की यु काल निवावे माथे, दन दन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथे। के सुन सुन साख कबीर की, कबीर परमेश्वर की समर्थता की महिमा को सुनकर, साख को उसकी वास्तविकता को सुनकर कहते परमात्मा की महिमा जहां चर्चा होती है यु काल भी नतमस्तक हो जाता है। सही सत कह रहे हैं, और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ है। सुन सुन साख कबीर की काल निवावे माथे, वो माथा नीचा कर लेता है, और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। अब क्या कहते हैं, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू वजन प्रताप से यू भाज्य सुनत आवाज। क्या बताते हैं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा समझो जो सब संसार रूपी वृक्ष का पालन करता है, और 16-17 में कहा कि सर्पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी ये भी नाशवान है, केवल जीवात्मा मरती नहीं। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष मन पुरुषोत्तम, यानी वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई इनसे भी और है। सर्वपुरुष ये गीता ज्ञान दाता है, अक्षर पुरुष ये सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, यह सर्वपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म वो असंख्य ब्रह्मांड का कंट्रोलर है, ओवरऑल कंट्रोलर है इन सब के ऊपर, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष पर भी वो कंट्रोलर है। अब जैसे और बताया है वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वही परमात्मा है। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में यू गीता ज्ञान दाता अपनी स्थिति बताओ है कि मैं तो लोक वेद के आधार से प्रभु पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, प्रसिद्ध हो रहा हूँ। कारण क्या है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी ये स्थूल शरीरधारी प्राणी है चाहे आत्मा है उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम पा रहा हूँ। लेकिन पुरुषोत्तम तो कोई और है। अब यहाँ दादू साहेब जोशी का प्रमाण बता रहे हैं के केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज दादू भजन प्रताप से यो भाग्य सुनत आवाज। अब जैसे क्या बता रहे हैं कि जैसे हाथियों का भी गजराज माने हाथियों में भी तगड़ा सबसे शक्तिशाली उनका भी सरदार मुखिया जो हाथी होता है ये समझो यू काल है, यानी वन्य के अन्य प्राणियों से, वन्य प्राणियों से हाथी घना तगड़ा होता है, दिल डौल विशाल काय होता है, उसके सामने अन्य प्राणी कुछ भी नहीं होते। कहते ऐसा तो समझो इसने काल ने हाथी तो, और कबीर परमेश्वर की शक्ति समझो जो केरी यानी बब्बर शेर, और बब्बर शेर दहाड़ देना एक बार की तो दहाड़ लगा दे हाथी लीड कर देता है, इतना भयभीत हो जाता है मुंडी छुपा कर भाग लेता है, दूर जाकर डटते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं जैसे वो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में जो खुद कह रहा है भाई मैं तो प्रभु इसलिए पाक गया मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी उन तो तगड़ा हूं मैं, लेकिन पुरुषोत्तम का कोई और है। वही दादू साहब कह रहे हैं केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, गजराज साथियों का राजा शब्द जो भी छोटा नहीं है, थोड़ी पावर नहीं है, जैसे हाथी भी बहुत तगड़ा होता है अपने सब जंगल में, लेकिन शेर के सामने उसकी भी टट्टी निकल जाती है। तो ऐसा समझो कि परमेश्वर कबीर जी को समझो बब्बर शेर, और ये तुम्हारा ये काल समझो एक हाथी, ये खुद कहता है मैं इन तो तगड़ा हूँ इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लोकवेद, लोकवेद माने कहा सुना तो यानी दंत कथा से। फिर क्या बताते हैं पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए अस्थि के असवार को ये स्वर्ण काल नहीं खावे। अब देखो कैसे उपमा दे रहे हैं महात्मा दादू साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी कैसे उपमा दे रहे हैं। अब तो यहाँ उपमा दे दी कि काल को तो समझो हाथी और परमात्मा को समझो बब्बर शेर। अब क्या बता रहे हैं कि काल को तो समझो कुत्ता और तुम बैठ गए हाथी पे, यानी परमात्मा कबीर जी की शरण को समझ। अब ये उदाहरण है कि तुम हाथी पर बैठ गए परमात्मा कबीर जी की शरण माने से, और हाथी कहीं गांव में चला जाता है तो गांव के सारे कुत्ते उसको चौगुर्द भौ 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 अरे करें 50 फुट दूर निकट नहीं आ सकते, उनको पता है अगर एक भी मार दिया साथ मरेंगे। तो कहने का भाव ये है दादू साहब कह रहे हैं कि आज तुम इतने सुरक्षित हो गए कबीर साहब की शरण में जैसे तुम हाथी पर बैठ गए हो, और काल समझो कुत्ता है भौंकता रहेगा घुर घुर जरूर करेगा क्योंकि इसकी आदत से है, लेकिन जब तुम डरते तो पड़ गए तो यू खावेगा यानी हाथी तो उतर गए थे और ऊपर बैठे रहे तो इसकी इसकी रीत से बाहर हो गए तुम, इसकी पहुंच से बाहर हो। अब पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरी दादू दिन दिन ऊंचा हो है परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की जय कोई ले वे ओटी तिनको कभी लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। ये काल वज्र मारे है जैसे पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 96 मंत्री थे 95 थे कितने थे वो सारे एक जाज मजा रहे थे, किसी ने रोण जावे थे, किसी का शोक व्यक्त कर आप मर गए। अब ये इसका वज्र मार दिया, इसने काल ने एक चोट मार दी, खराब कर दिया, वो जाज सारे मर गए इकट्ठे। और भी जगह जगह एक्सीडेंट होते हैं। कहते हैं दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटी, तिनको कबूला गए नहीं वो काल वज्र की चोट। कि उसका काल वज्र की चोट इस तरह की दुर्घटना वो नहीं कर सकता उस भगत की, जो सच्चे बनते हैं सच्चे जलते हैं, यानी उसकी रह हाथी पे है, नीचे पड़ गया तो खाएगा भाई काल, तो उसका स्वभाव है। अब क्या बताते हैं, और संत सब कूपे हैं ये के तेज रीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। कहते हैं अन्य संतों को भी तुम कहते हो उस संत ने ऐसा लाभ दे दिया, उस भगवान कृष्ण ने ऐसा लाभ दे दिया। कहते हैं और संत सब कूप हैं, ये समझो वो कुएं हैं, और केतेक जरीता नीर, कुछ एक ऐसे जो झरने छोटे मोटे बह रहे हैं, जरीता यानी झड़का पानी झर झर कर निकल रहा है। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर, यानी कबीर जी की समर्थता बता रहे हैं कि कबीर साहब को तो दरिया समझो दरिया, और जो छोटे मोटे भगवान के तुम गुण गाओ हो, किसी को कुआ समझ लो, राम कृष्ण ब्रह्म ने सर्वपुरुष ने ईसा समझ लो, दरिता नीर झरना झरना की तो थोड़े टुकड़े में गए थोड़ी राहत दे दे, और कबीर साहब को समझो दरिया जिसमें नहर भी निकाल लो और नहा भी लो और खेती भी कर लो फिर भी पर्याप्त जल रहता है। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीरे, जन्म मृत्यु सदा के लिए वो भक्ति इस परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करने से सदा के लिए मोक्ष हो जाता, फिर लौट कर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु नष्ट हो जाता, सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे सदा जन्म मृत्यु रहेंगे और आगे मरेंगे, पहले भी मरते थे। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़े पीड़े, श्वास उश्वास सुमर ले तू दादू नाम कबीर। वो मंत्र है श्वास उश्वास जैसे मन का, सतनाम सुमर ले, श्वास उश्वास सुमर ले दादू सतनाम कबीर, यानी कबीर जी का दिया हुआ जो सतनाम है। कोई सरगुण में रीत रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीरी की मो पे कही न जाए। कोई तो सरगुण कह है कोई निर्गुण कह रहा है, निर्गुण तो ये नो बताओ है भगवान निराकार दिखता है कोने, और ये गलत डेफिनेशन करें, और सरगुण बताते हैं ये संसार ही उसका सरगुण रूप है, ये ब्रह्मांड है और ग्रह पर है चांद सूर्य उसका साकार रूप है। कहते कोई सरगुण में रीत रहा कोई निर्गुण में रीत रहा कोई सरगुण ठहरावे, दादू गति कबीर की वह मोह पे कहीं न जाए, वो कोई और है। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काले, ओए होए। कहते दादू साहब कह रहे हैं कबीर परमेश्वर का नाम सुनकर भी ये काल ऐसे थर थर कांपता जैसे शेर की दहाड़ में हाथी लीद कर जाता है। कहते हैं दादू नाम कबीर का ये सुनकर कांपे काले, नाम भरोसे नर चले है बाका ना होवे बाले। कितने ठोक के समर्था दी उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले सतलोक से चलकर आए। कहते हैं जो नाम भरोसे दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले यानी दृढ़ रहे मालिक के नाम के ऊपर, इसको छोड़े नहीं पाले ने, फिर कहते हैं उसका बाल बांका भी काल नहीं कर सकता। जिन मोह को निज नाम दिया सोहे सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहारे। पुणात्मा इस दौरान के सत्संग में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सभी सदग्रंथ बताते हैं कि कबीर इज गॉड, वो कैसी लीला करता है, वो अपने तीसरे मुक्ति धाम में सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, और खुद परमात्मा कहते हैं सतलोक से हम चल आए काटन काल की फांसी, अवगत से चल आए मेरा कोई भेद मुरहम ना पाया। काशी शहर जल विच डेरा तहां दुल्हाए न पाया, और कहते हैं परमात्मा काशी शहर जल में डेरा तहां दुल्हाए न पाया। मात पिता मेरे कोई नाई ना मेरे घर दासी, दुल्हे का सुत आन कहाया यो जगत करे मेरी हंसी। कहते हैं मेरे ना मात पिता ना मेरे कोई पत्नी, मैं तो सतलोक से चल कर आया था और वहां जंगल में उस कमल के फूल पर जल में डेरा डाला था। और ये कहते हैं इजुलाहे का पुत्र आण कब आया यो जगत करे मेरी हंसी। तो परमात्मा कहते हैं हम सतलोक से अवगत से चलाए मेरा कोई भेद मरम ना पाया। ये खुद भी ही अपने सच्चिदानंद की वाणी में कहते हैं, और जिन्होंने परमात्मा पाया वो संत भी ये प्रमाण देते हैं, हमारे सदग्रंथ भी ये प्रमाण देते हैं। प्रमाणित हुआ कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव।